राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 23 नवंबर 1993 को दोपहर लगभग 2:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। ये नाम जपने से बड़ा फायदा होता है, जल्दी होता है। पर ओंकार सत्ताम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्धन्योनि सैभव गुरु प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है विशत नान घोषी विशत। इसलिए जपने से बहुत जल्दी कल्याण होता है। पूछते हैं कि अपना ठीक है भाई, आपका मन करे और श्रद्धा हो तो जपो। आपको एक बात बतावे ध्यान देकर आप लोग सुने, अमुक नाम से हो जाएगा, अमुक जप ज्यादा होगा उसे होगा, ऐसा नहीं है। मूल में जितना आपके हृदय में प्रेम प्रकट होगा, भगवान की तरफ आकर्षण होगा, भगवान के नाम में आकर्षण होगा, भगवान के दया क्षमा आदि गुणों में आकर्षण होगा, भगवान की लीला में आकर्षण हो जाएगा, मन उसमें प्रविष्ट हो जाएगा, हृदय गदगद हो जाएगा, आंखों में आंसू आने लगे, ऐसा हो जाएगा तो उससे जल्दी लाभ होगा। नाम कोई से जपो आप, भावग्राही जनार्दन भगवान भाव भोगता है, भाव ग्रहण करते हैं। तुम्हारा भाव कैसा है उस भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। जितना भाव आपका निर्मल होगा, प्रेम होगा, तो प्रेम भाव होगा तो उसमें वो ताकत है अधिक लाभ करने की। ये अलग अलग नाम में जब ये क्या है, ये है संप्रदाय। अपनी अपनी संप्रदाय में अपने अपने नाम को श्रेष्ठ बताते हैं। जैसे वैदिक संप्रदाय है तो वो ओम तत्सत को विशेष बताएंगे, ऐसे अपने अपने संप्रदाय वाले उसको अधिक अधिक बताते हैं। अगर उनका कहना ठीक है, उस संप्रदाय में उसी दीक्षा में उसी शिक्षा में वे रहे हैं, उनमें उनकी श्रद्धा है प्रेम है तो ठीक है, ये उसे लाभ होता है। परंतु इससे ये नहीं है कि दूसरे से लाभ कम होता है अथवा नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैंने संतों से महात्माओं से सुना है, संतों की वाणी पढ़ी है, पुस्तक पढ़े है, उस सब से इस निश्चय पर मैं पहुंचा हूं कि जिस नाम में जिस रूप में जिस लीला जिस धाम में आपका मन अधिक लग जाए उसे बड़ा लाभ होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये टटोलते रहोगे इस नाम से ज्यादा होता है, इस महात्मा से ज्यादा होता है, इस गुरु जी से ज्यादा होता है, ये बात वास्तव में ऐसी नहीं है। गुरु में तो ऐसी बात होती है, कोई वास्तव में तत्व जीवन मुक्त पुरुष होता है तो उसके कहने से जो लाभ होता है वो साधारण से लाभ नहीं होता, ये तो होती है सब, क्योंकि उनकी शक्ति काम करती है। हमें किसी का कहना करे तो वो कहने वाले का असर पड़ता है, उससे मदद मिलती है। जैसे किसी के खेत में आप काम करो तो शाम 10-15-20 रुपया आपको मिलेगा, 30-30-40-40 रुपया एक दिन में मिलते हैं, तो इस खेत में काम करो तो मिलेगा। आप कहो कि मालिक ने क्या दिया है, खेत ने दिया है, तो खेत में हमने काम किया, काम करने से मिले हैं रुपए, तो जंगल में जाकर पहाड़ में पत्थरों को इधर उधर पटको, इधर उधर करो, दिन भर मेहनत करो, कुछ मिलेगा? तो मालिक ने दिया तो मालिक दे दे, आप जाकर खेत में सो जाओ आराम से, मालिक दे देगा? ना मालिक देता है ना काम धंधा देता है, उसके कहने के अनुसार काम करने से देता है। इस तरह से गुरुजनों की आज्ञा पालन करने से उनमें जो विलक्षणता है वो नीचे उतरी आती है, विलक्षण शक्ति होती है उसमें। आप साधारण माँ बाप के पुत्र हो ऐसा मान लो, मैं उदाहरण देता हूँ, कल्पना करो, परंतु आप माँ बाप की आज्ञा पालन करो, कह दिया और चट उसको काम कर दो। इसको मारवाड़ी शब्द में कहते हैं, ये वचन नीचा पड़ने नहीं देता। मानो जहां माँ संता ने कहा, माँ ने कहा, बाप ने कहा, चट उठाकर काम कर दिया, तो उनका वचन सामने पूरा का पूरा आ गया। थोड़ी देर कर दी तो वो तत्व नहीं रहा, वो नीचा गिर गया। तो नहीं करे वो तो पत्थर की तरह होगा, कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है। संत पुरुष होते हैं वो कृपा कर कह देते हैं भाई ऐसा करना चाहिए, जब तू ऐसा कर, ऐसा बहुत कम कहते हैं। जो ऊंचे दर्जे के महापुरुष होते हैं उनकी बातें मैंने सुनी है, महात्माओं के क्या आचरण होता है, कैसे होते हैं, उनकी बहुत विवेचन सूक्ष्म विवेचन मैंने सुना है। याद मेरे जितना है वो तो मैं कह सकता हूँ, अभी भूल गया तो भूल गया, पर मेरे सुना हुआ है ऐसा। अस्थिर संत महात्मा पुरुष जल्दी जल्दी कहते नहीं कि तुम ऐसा करो, ये कहते नहीं है, उनके शब्द में ताकत होती है। वे कह दे तुम ऐसे करो तो फिर निहाल हो गए, हम ऐसा सुनना चाहिए, वो शब्द पकड़ कर वैसे जीवन बनाओ, देखो आपकी विलक्षण उन्नति होती है। आश्चर्य आवेगा कि इतना कहां से चीज आ गई, तो उनमें शक्ति है, और उन वचना का निरादर करो तो अपराध होता है। इस वास्ते अच्छे ऊंचे महापुरुष चेला नहीं बनाते, चेला बनाकर कह दे काम करे तो उसका तो काम पूरा हो गया, परंतु उनका अपराध करे काम नहीं करे तो दंड होगा। चेला नहीं बने उनका काम कहता कहना करेंगे तो फायदा होगा, न करे तो कोई फायदा नहीं होगा। चेले बन जाओ और उसका कहना नहीं करो, दंड होगा, बड़ा पतन होगा। इस वास्ते परमात्म तत्व कहाँ है, परमात्म तत्व अपने भाव में है। उधर जो कहने वाला वो है, उनका जो भगवान के साथ संबंध है उनमें ताकत है, और आपका भाव उसको ग्रहण करता है, वो ताकत होती है उसमें वचनों में। एक बात याद आ गई बीच में, मारवाड़ में जितने क्षत्रिय राजपूत है ना, वे प्रायः शिया जी के संतान है। शिया जी थे, शिया जी राव, उनकी बात मैंने सुनी है, पूरा इतिहास मैं जानता नहीं हूं, कि सच्चा इतिहास मिलता कम है। तो बात क्या थी, एक राजा थे, उसके लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ तो ज्योतिषी बड़े अच्छे जानकार थे। ज्योतिषी ने कहा कि इस बार तो लड़का पैदा हुआ तो भाई रानियों की तरफ से था, ऐसी एक चीज बारे फेंक दो, जब पैदा हुई उसी दिन फेंक दो बाहर, तो उस लगन को वो पकड़ गए। बारे ज्योतिषी इन भक्त में ऐसी लगन है, ऐसा कुछ बात थी। तो वो लड़का पैदा हुआ, पहुंचा तो लड़का पैदा होने बाद थोड़ी देर फेंका तो वो ने कह दिया कि लड़का बड़ा खराब है, कोई काम का नहीं है। लड़का पहले हो गया, लगन पहले का था और वो देरी का लगन पहुंचा तो उन्हें वो खराब कह दिया। ज्योतिष पर विश्वास करते थे लोग, बड़ा खराब निकलेगा ये लड़का, तो क्या किया कि उस छोटे लड़के को जंगल में छोड़ दिया, छोटे बच्चे को जंगल में छोड़ दिया, घोर जंगल में आ गए। तो वहां एक सिंघनी ब्याई हुई थी, सिंघनी ब्याई थी, सिंघनी ने देखा छोटा बच्चा बड़ा कोमल कोमल हो, जंगल उसको दया आ गई तो अपने बच्चों को जो पकड़े पकड़ कर ले गई। उनके पकड़ने का तरीका होता है उसी मुंह से बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और उसी में से मूसा को पकड़ती है, बड़ा फर्क है। पाणिनि शिक्षा में लिखा है कि शब्दों को कैसे बोले, किस तरह से शब्दों को बोले, तो वहां दृष्टांत दिया है, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दृष्टा भाव नीड़ियत भीता पतन भेदा भ्याम तद्वत वर्णन प्रयोजित। व्याघ्री जैसे अपने बच्चे को उठाती है, वो न तो उसको छूट जाए गिर जाए ऐसा करता, न दांत गड़ जाए ऐसा बीच की तरफ से पकड़ती है, ऐसे शब्दों को बोलना चाहिए। अब व्याघ्री को अब देखा ना, बिल्ली को देखा है तो सिंह नहीं देखो देख बिलाई, और जम नहीं देखो देख जवाई, कहावत है कि जमरा जाता है वो एक आदमी को ले जाता है, जमाई एक आदमी को ले जाता है, जम नहीं देखो जवाई तो देख ले, यूं ले जाओ आदमी को, और बिल्ली देख ले सिंह नहीं देख सिंह, बिलाई बिल्ली को देख ले तो सिंह होता है। तो बिल्ली को तो हमने देखा, आपने भी देखा होगा, बच्चों को उठा कर ले जाती है, यहाँ गलत यहाँ से पकड़ती है, बच्चा यूं कर देता है आपने हाथ पर वो बचल जोर देती है। तो भीता पतन भेदाभ्याम, न पतन हो जाए न भेद हो जाए, ना तो गिर तो न जाए एक गाद भी न घट जाए, ऐसे ढंग से पकड़ती है। ऐसे वर्णों को उच्चारण करना चाहिए। पाणी जी महाराज ने व्याकरण के बनाने वालों ने शब्दों के प्रयोग की बात बताई कि ऐसे शब्द बोलो, राम 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 तो दांत लग गया, राम 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 गिर गया, राम 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 ऐसे बोलो, ना तो वो गिरे ना दांत लगे, इस तरह से वर्णों को अक्षरों को बोलना चाहिए। तो वो सिंघनी ले गई, उसके बच्चे थे उसके साथ, वो भी रह गया, उसने सिंघनी का दूध पिया, उसने शिया जी इस वर्ष नाम हुआ सिन्हा जी थे शिया जी, तो वो दूध पिया उसमें रह गया, बच्चे खेलते रहे खेलते रहे। से इतनी बात मैंने सुनी है कि वे बच्चे थे ना सिंघनी के, वे चारों पगों से चलते थे, तो ये क्या क्या घुटनों के बल चलते थे, पूरा पैर पैर तो ऊंचा लंबे हो जाए, पैर ऊंचा हो जाए, हाथ छोटे हो जाए, अब हाथों के समान तो घोड़ा टेक कर चले तो घोड़ों के चलते थे। मैंने तो ऐसी बात सुनी कि 12 वर्ष के हो गए तो घोड़े चलते थे, बुरा जी कोई देखते वही चलते पिया दूध पिया। तो सिंघनी का दूध पीने से वे बड़े भारी शूरवीर हुए, 12 सा बीड़ो तरह पाली क्यों प्रवेश, सिंह सीओ छोड़ कनेश वो आयो मुर्धर देश, 1200 बीड़ो तरह ही बात है, अब आज तो 2000 है तो 1200 की बात है, 1200 बीड़ो तरह 1200 का दो वे पाली की ओर प्रवेश वो पेशी आया। तो उनके सब संतान बड़े राजपूतों बड़े शूरवीर हुए, राजपूतों की बड़ी प्रसिद्धि है, जो मारवाड़ के राजपूत है बहुत विलक्षणता है, मारवाड़ के संतों की और मारवाड़ के राजपूतों की और मारवाड़ के सतियों की बड़ी प्रशंसा है संसार में, बहुत विलक्षण हुए ये ऐसे श्रेष्ठ हुए है। तो वो सिंघनी का दूध पिया था उन्होंने बचपन में, तो बचपन पहले सिंघनी मिली सिंघनी वो बाप चूंगा बच्चों क्या करे बताओ। तो बात क्या थी, वो थोड़ी से पहले लगन में हुए थे, बड़े प्रभावशाली हुए, मन वो देखने में लगन ठीक नहीं देखा गया जैसे प्रभावशाली हुए। तो वो बच्चा सिंघनी का दूध है, कहते हैं सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है दूसरे पात्र में नहीं ठहरता, कहावत है ऐसी है क्या भगवान जी हमें पता नहीं है, हमने देखा नहीं है। तो ऐसा वो दूध पीने से इतने प्रभावशाली हुए जोधा बड़े जोधा हुए, हारते नहीं थे। और उनके संतान जितने हुए वे राजपूत ही कमधज कहलाते। कमधज, कमधज किसका नाम? कबंध है, संस्कृत में शब्द है कबंध। उसको भी मारवाण में कमधज कहते हैं। कारण उसका क्या, युद्ध में जाते तो सिर कट जाता। सिर कटने के बाद में तलवार लेकर सैकड़ों को हजारों को मार दे, सिर कटिया हुआ है बस, फटाफट 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 सिर दौड़ रहा है खूब, और सिर है ही नहीं, माथा है ही नहीं। वो कबंध होता है, कबंध कहते हैं उसको। सिर कट गया तो बड़ा युद्ध करते थे, विजय कर लेते थे। ऐसी बातें थी, अभी की बातें भी मैंने सुनी है। कोई कोई ऐसा होता है, डाडर वाला गांव है, आगे घंटियाली गांव है, उसकी सीमा पर छीला तालाब है, उसमें आपस में युद्ध हुआ था, थोड़े वर्षों की बात है। तो उसमें एक जाट को ऐसा सूरवीरता आ गई थी, तो वो ले द्वारा चला, तो जहां तक गया वहां तक सीमा, वो गिरा वहां से सीमा हुई, यहां सीमा हुई, ऐसी बात हुई है। तो शक्ति है उनमें, खुद में सिंघने के दूध में, खुद के पुरुषार्थ में। वो चाहे जिस देश में जावे, जिस जगह काम करे, जो काम करेगा ठीक करेगा। सच्चाई है उसमें, सुदृढ़ता है, सत्य पालन करता है। ऐसे संत महात्माओं में ताकत होती है विलक्षण, उसको लेता है वही जो सन्मुख होकर वो पकड़ ले, बस उनके अर्थ से पकड़ ले। तो संतों की बात दूसरी रही, माँ बाप की आज्ञा पालन करे उसमें ताकत आ जाती है। माँ जो कह दे वही काम करना। पांडवों की बात आपने सुनी होगा, पांडव लाखाग्रह में जला दिए गए, लाख का गृह बताया उसमें जला दिए। तो ये शकुनी का कपट था, दुर्योधन दुशासन शकुनी कर्ण, ये चार है। इनको स्वरूपदास जी ने पांडव विश्व चंद्रिका में चंडाल चौकड़ी कहा है। ये चंडाल चौकड़ी थी चार, जो किसी तरह से पांडवों को मारना ही चाहते थे, नष्ट कर देना है। कर्ण को ये बात सुहाती नहीं थी, कर्ण था दुर्योधन का बहुत मित्र, वचनबद्ध था दुर्योधन का साथ देना। वो कहता ये काम ठीक नहीं, ऐसा ही लड़ो सामने, जो जीत हो जाए, जान हो जाए, जो हो जाए। शकुनी ये करता था, पासा खेल गया, सब कपट करना, सब शकुनी का काम था। ये गंधार देश का था, गंधारी का भाई था, दुर्योधन का मामा था, ये दुर्योधन शासन का। तो वो इस तरह से कपट किया करता था। तो वहाँ लाखाग्रह बनाया गया, थोड़ी सी बात विस्तार से कहता था। वहाँ भारतीय कथा है, महाभारती कथा बड़ी विलक्षण है, सुनने में एक शूरवीरता आ जाए, आदमी के विलक्षणता हो जाए, ऐसी विलक्षण कथा है। शतसहस्र संहितायाम 100,000 है, 1,00,000 श्लोक है उसके, व्यास जी का बनाया हुआ। तो एक दिन विचार किया कि पांडवों का नाश कैसे हो, तो कहा कि अमुक जगह मेला होगा, बारनावत गांव, बारनावत था ना, बारनावत गांव में मेला लिखा जाए। तो अपने सब राज्य में ढूंढी पिटवा दी कि अमुक अमुक तिथि को बारनावत में मेला होगा, जो सब लोग आवे, अपने अपने हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, गाय है, भेड़ है, बकरी खरीदे, बिक्री करे, जिनको बिक्री करनी हो, जिनको लेना हो, वे सब वहाँ इकट्ठे हो जाए व्यापार के लिए। इस तरह से मेला लगा था। अब उसमें मेला लगना, तो भाई मेले में कौन जाएगा, ऐसा विचार हुआ सभा में। तो कौरव तो सब समझे हुए थे, पांडव तो छोटे थे, उस अवस्था बड़ी नहीं थी ज्यादा, जवान जवान भी थे, छोटे छोटे। तो वो बात चली तो वहां मेले में रक्षा करने को कौन जाएगा, प्रबंध करना है राज की तरफ से, सिपाही साथ में सैकड़ों हजारों रहेंगे, पर मुख्य अपने राज का आदमी कौन जाएगा। तो बीड़ा करते थे, ये पान बीड़ा है ना, वो बीड़ा उठाया, तो बीड़ा रखा, ये बीड़ा कौन उठाता है। तो कोई बोला नहीं, तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि मैं चला जाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज भेज दिए वहां, ये पहले कपट गूंथा हुआ था, दूसरा बोले ही नहीं, पांडवों को पता नहीं था, सभा में है, अपने घर की बात है, राज्य की बात है, अपन तो सहायता करना है। तो वो चले गए, तो चारों भाई माँ सब साथ में गए। वहां वो शलाखा ग्रह बनाया जो बांस और शन और बीच में लाख ये दिया गया, ऊपर से कली कर दी, मकान जैसा मकान ऐसा दिखे और ऐसे जलाती बहु भेज दिया। विदुर जी महाराज बड़े नीतिज्ञ थे, ये पांडवों के रक्षक रहे, दासी पुत्र थे विदुर जी महाराज। विदुर जी और धृतराष्ट्र और पंडु ये तीन व्यास जी की कृपा से पैदा हुए थे, विदुर दासी पुत्र थे, बड़े नीतिज्ञ थे, बहुत धर्मात्मा थे विदुर जी महाराज। तो विदुर जी महाराज को इसका पता लग गया कि ऐसा कपट किया है, तो फिर ये जाने लगे तो वहां आता है मिलेच्छ भाषा में बोले, मिलेच्छ भाषा युधिष्ठिर जानते थे, विदुर जी जानते, औरों को पता नहीं था। उस मिलेच्छ भाषा में उनको बता दिया आप सावधान रहना, वहां ऐसी बात है, जलाने के लिए प्रबंध किया है, बात वो भी मालूम युधिष्ठिर समझ गया, युधिष्ठिर अपने भाइयों से कह दिया। अब वो गए तो वहां पर दरवान था, क्या नाम, पुरोचन, पुरोचन नाम का दरवान था, कि तुम ऐसे काम करना हमको रात को आग लगा देना या तुम ऐसे देना आड़ा बंद कर देना। तो ये बात पता लग गया। फिर एक बात आई, एक चूहा भेजा पिंजरे में डाल करके, ऊंदरा चूहा उसको भेजा और वो बताया वो युधिष्ठिर को दिया, तो वो समझ गए विदुर जी महाराज ने किया, मानो तुम कैसे बचोगे चूहा जैसे आग से बच जाए ऐसे बचोगे, मानो बीच में सुरंग ओढ़ लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो बच नहीं सकोगे। वो चूहा दिया गया, उस चूहा ले लिया, वो समझ लिए। तो उन्होंने विचार कर लिया, तो रात्रि में मजदूरों को लाकर और खुदवाई जमीन, जमीन खुदवाई और सुरंग बनाई, मील दो मील चले जाओ जीते भीतर ही भीतर गुफा बनाई, फिर वहां जाकर निकल जाया गाड़ी, ऐसे बनाई गई। अब वो निकालेंगे भी अमुक दिन ये आग लगाएंगे, उससे पहले ही भीमसेन से कहा, भीमसेन ने कहा तो भीमसेन से भी कहा, भीमसेन ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया, अपने माँ को और छोटे भाइयों सब भाइयों को उस सुरंग में होकर पहले पहुंचे, आप लोग जाओ, अब एक रात बाकी है, दूसरी रात में आग लगेगी, ऐसा कुछ संकेत था। तो भीमसेन ने देखा सब, तो वो हाथ से खोद कर देख लिया, ठीक बात है सभी, लाख जलेगी एकदम आग लगेगी जल जाएगी तो खत्म हो जाएंगे। तो भीमसेन ने क्या किया, पहले ही दिन रात्रि में पौड़ थी उसके भीतर से ताला लगा दिया, चाबी अपने पास ले ली, पौड़ पर सोता था पुरोचन, जा करके गुफा में प्रवेश कर दिया, चार भाई माँ इनको तो उसमें प्रवेश कर दिया, वो चढ़ा ऊपर, ऊपर चढ़ करके चारों तरफ आग लगा दी, आग लगा कूदा एकदम ही नीचे कूदा, तो वो शब्द हुआ तो उसे पुरोचन जला, उसने देखो तो आग लग रही है ऊपर, तो भागने लगा तो तलवार आड़ा पा दिया हुआ भीमसेन ने तला दे दिया, तो वहां वो मर गया, दाह क्रिया भी साथ ही हो गई। भीमसेन गुफा में जाकर ऊपर पत्थर लगा दिया उसने पहला शिला के ऊपर, और वो भी भीतर चला गया, अगड़ी माँ को और भाइयों को लेकर के चला, रात में ही थक गए तो दो भाइयों तो गोदी में ले लिया, तो द्वारा से बैठा दिया, माँ को यहाँ बैठा दिया, बैठा के चला, बड़ी विस्तृत कर रहा है। तो इस तरह से चलकर वे गए, फिर वो एक एक चक्रा नगरी में बैठा रहे, बकासुर महाराज की कथाएं आती है। तो इस तरह से लखा जलाने के बाद इधर पता लगा कि पांडव जल गए, और वहां बाहर ठहरे हुए थे पांच तो लड़का थे, एक माँ थी, बिल्कुल ठहरे हुए थे वे, उसमें मर गए, तो कहते ये मर गए, ये मर गए, खत्म हो गए, ऐसा होकर बस कौरव ने दिन मना लिया, रुआ पीटा कर लिया, लाने तीसरा दिन कर लिया, बारह दिन कर लिया, नारायण गली कर दी, सौ खत्म कर दिया, सब काम हो गया, सब तो मर गया, पांडव तो मर गए। और पांडव है जो क्या क्या ब्राह्मण का वेश धारण करके एक ब्राह्मण के घर पर रहे, तो वे घर पर रहे तो वहां एक बकासुर रहता था राक्षस, एक चक्रा नगरी में, तो वो राक्षस मारता तो सब डरते रहे कि कब न जाने कब आ जाए, कब खा जाए, मार दे वो। तो राजा ने कहा भी सबको भय लगता है तो अपने प्रबंध कर लो। तो उसे मिलकर संधि कर ली, तुम क्यों खाते हो? मैंने भूख लगती खा जाता हूँ, तो तुम्हारे लिए एक गाड़ा भर तो बाकड़ा बनाया, उर्दू का गुगुई बना दी, गुगुई बाकड़ा वे बना दें, एक भैंसा और एक मनुष्य, रोज ना तुम्हारे वहाँ हाजिर हो जाएंगे। कि जिस दिन वहाँ पर चौपट कर दूंगा गाँव को सब, कोई बात नहीं। तो ये ब्राह्मण घर ठहरे हुए थे, राज से आ गया, 12 वर्षों से पासी बारी आती थी, इतना बड़ा शहर था, इतना बड़ा शहर था, 12 वर्षों से बारी आती। तो उस ब्राह्मण की बारी आ गई जिसमें ये पांडव ठहरे थे। भारत वो सामने आज राज ने कह दिया था कि ये भैंसा और वागला, ये तो राज में प्रबंध होता था, मनुष्य इतना लगे रोज तो बारी आया आना पड़ेगा एक एक घर से। तो उसकी बारी आ गई और राज सुना दिया। ये बाहर ठहरे हुए थे, भीतर अपना परिवार था, तो ब्राह्मण था, ब्राह्मणी थी, उसी एक कन्या एक छोटा बालक, ये चार पाने थे भीतर में। तो वो सुना दिया तो आपस में बातें करने लगे। ब्राह्मण कहता मैं जाऊंगा उसी भेंट में, ब्राह्मणी कहती है कि मेरा धर्म है पतिव्रत पालन करने का, तो मैं जाऊंगी। तो विवाद करने लगे तो लड़की थी बड़ी, वो बोली कि आप किसी को तो दोगे ही, आप समझो हमने राक्षस को ही दे दी, मैं तो घर में रहने वाली हूँ नहीं, इस वास्ते मैं चली जाऊंगी। नहीं बेटा, तेरे को तू कन्या है, कन्या को तो कन्या दान का पुण्य होता है, आग में भेजे कन्या को कैसे हो सकता है। पति ने कहा कि मैं जाऊंगी, आप चले जाओ तो बालकों का पालन कौन करेगा, इस वास्ते बच्चों का पालन आप ही कर सकते हो। पत्नी ने कहा मैं चले जाऊं तो ब्याह पूजा कर दो, बालकों का सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसे बात हो रहा था, लड़की अपना अपने युक्तियों कह रही थी। इतने वो छोटा बच्चा वो बात होती देखी ना, माता कुंती ने देखा कि आज क्या पंचायती है, ब्राह्मण लोग सोए नहीं है, आज क्या बात है। तो ये बाहर जाकर के सुन रही थी सब घटना। उस समय सब ने यूं कहा, तो बच्चा छोटा बोला लकड़ी दे मैं जाऊंगा मार डालूंगा। ऐसे सब हंस गए, सब क्या बात आएगा बच्चा। तो हंसी तो कुंती ने प्रवेश किया कि क्या बात है, तो हमारे घर की बात है सुना दी। कुंती ने कहा कि मेरे पास बेटा है, मैं भेज दूंगा एक बेटा को, तुम्हारे एक ही तो कन्या, एक ही बेटा, एक बाप एक माँ, एक ही तो, एक एक ही हो, मेरे पास है बेटा, मैं भरूंगा। वो कहते अतिथि सत्कार करना चाहिए, अतिथि को मौत में भेजना चाहिए, ये धर्म नहीं है। कि धर्म तो तुम भेजो नहीं है, हम चाहिए भेजा, हमारा काम है जिस घर में हम आराम पावे उस पर कोई आफत आ जाए तो हमारे को पहले रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे को आराम दिया है तुमने, आश्रय दिया है, इस वास्ते हमने सुख पाया है, इस वास्ते हम जाएंगे। ये भिक्षा लाया करते थे, उसे काम करते थे, भिक्षा दे भगवती कर भिक्षा लाते, माँ जा गया करते थे, माँ आधा तो भीमसेन दे दी, आधा में पांचों काम कर देता, ऐसे भोजन होता था। अब बाहर जाकर भीमसेन को बुलाया, ए बेटा आओ, हाँ माँ बोलो, कि राक्षस की भेंट में जाना है, बकाश राक्षस है, बहुत ठीक है। इनके तो मन आनंद आ गया, तो बोझ हो गई, कई दिन से कुछ थी करी को भूखे तो कुलते ही है। युधिष्ठिर आए तो बा क्या कर रही हो, हमारे को भेज दो। अर्जुन कहता माँ मेरे को भेज दे, माँ तू कह दे मैं चला जाऊं। तो माँ बोले बेटा तुम्हारे किसी को भेजू तो मेरे को रोना पड़े, भीमसेन कम कर देगा वो ही है लायक, इसमें भेजूंगी मैं। तो भीमसेन को भेजा, भीमसेन वहां गया बगाडर को लेटा करे वहां बैठा था। तो भीमसेन को भूख बहुत लगती थी, तो उबला हुआ बाकड़ा था ही खाने लग गया, कपड़ा धोते हुए पत्थर पर आता हाथ पड़ जाते, क्या दशा हुई, ऐसी दशा हुई लोगों की तरह राक्षस की। वो खाकर अब दोनों मदद कर रहे युद्ध, तो उसमें वो जितने वृक्ष थे जो सब साफ खेत में जो कर दिया अपने, उधर मर के जो मार दिया उसको, उसको मार करके उठा करके दरवाजे के गाड़ी जो शहर का दरवाजा होता है, रात थी दरवाजे गाड़ी सामने रखे, दरवाजा ढक गया था, बड़ा था ऊंचा मोटा। तो फिर बातें हुई बहुत है, किसने मारा, वो कहते हमने मारा, कहते हमने मारा, कोई हमने मारा। बेचारो राजा की सच्ची नहीं कृष्ण मारा, तो फिर वो भीमसेन को बताएगा इसने ये मार सकता है, इनाम देंगे इसको, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो क्या चलो पांचों भाई चुप से ऐसे चल दिए माँ के सहित बाहर ही, जब इनाम मिलेगा बात होगी प्रसिद्ध हो जाएगी बात, तो अपने चलो जंगल में चल दिए। ऐसे जाते हुए पहुंचे द्रौपदी के स्वयंवर में, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था उसमें ये पहुंचे। दादा जंगल में रहते फल तो खाते ही करते ऐसे चलाते थे, तो वहां रहते थे, तो वहां द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे तो वहां बलदेव जी कृष्ण भगवान और राजा लोग सब आए थे। तो वो देखे ब्राह्मणों के पंडली बैठे थे अपना ब्राह्मण की तरह, एक तो अधो वस्त्र है एक उत्तरीय वस्त्र है, दो ही वस्त्र रखते थे, उत्तरीय वस्त्र दो बैठा है। तो कृष्ण भगवान समझ गए कि पांडव है और वो पहचाना नहीं। वहां फिर कहा गया द्रौपदी आई साहब, बहुत सुंदर थी द्रौपदी, बहुत ही सुंदर सुंदर ज्यादा थी, उसके लिए कई राजा लोग आए। वहां भी धनुष रखा गया था, मत्स्य वेद था, मत्स्य वेदन करना, मानो नीचे तो तेल का कड़ा और ऊपर एक मच्छी बड़ी बड़ी मच्छी बनाई है, उस मच्छी को बनाकर नीचे एक चक्र चला है ऐसे ऐसे घूमे, उसमें एक छेद, उस छेद में ठीक मच्छी की तरफ आवे तो छेद में बाण मारे मच्छी वेदन कर दे, मच्छी वेदन कर दे उसको द्रौपदी ब्याहेगी, द्रौपदी का ब्याह होगा। ऐसे मच्छी वेद करे तो उसमें राजा लोग उठा नहीं सके धनुष, जैसे राम जी के धनुष में धनुष राम जी ने उठाया, जनक राजा के धनुष में उठा नहीं सके, चढ़ा भी नहीं सके। कर्ण है वो उठा लिया धनुष, उठा करके प्रत्यंच चढ़ाने लगा, तो भगवान ने इशारा कर दिया द्रौपदी को, तो द्रौपदी बोली गई उठाए तो मैं दास पुत्र है ये, मैं इसको बनूंगी नहीं, मैं तो क्षत्राणी हूँ, क्षत्रिय को बनूंगी, ये उठा लेगा तो बनूंगी नहीं। ये दुख हुआ, ये पहली बार यहां से दुख हुई, जैसे वो गिर गया वो दुख हुई। तो अर्जुन उठा तो लोग कहते रहे क्षत्रिय से नहीं उठे, बामन उठा के, बामन ये बामन क्या जाने, भिक्षा करो आप कहो इसको क्या पता है क्षत्रिय क्या होता है क्या धनुष होता है। लोगों ने कहा भाई बामन अंतोली रास है, इसका पता नहीं है, समुद्र को पी गए, ऐसा ऐसा ब्राह्मण ने काम कर दिया, ये कर दिया, तो मैं देखें कैसा होता है, देखो बामन ये चलता है मैं उठाऊंगा। महाराज वो अर्जुन चले तो अर्जुन ने वो धनुष उठा लिया, उठा करके फिर सदा दी चढ़ा करके टूट गया का धनुष, टूट गया, बड़ी भावा हो गई। फिर तो मैं कहूंगा मैं युद्ध होगा, युद्ध होने लगा, युद्ध होना लगा, भीमसेन अर्जुन सब चार हो गए, सबको पछाड़ दिया। ऐसे उस द्रौपदी को साथ लेकर के पहुंचे तो जिस घर में ठहरे हुए थे माँ के सामने कहा कि माँ हम भिक्षा लाए हैं कि बेटा पांचू ले लो। माँ पांच के देख राजा की कन्या को लाए हैं विवाह करने के लिए, तो कहा मेरी जबान कैसी सच्ची होगी युधिष्ठिर के, हम सच्ची करेंगे, तेरी बात को झूठी नहीं कहें, तो जो कह दी वो करूंगा। माँ ने कह दिया मैं दो बात करूंगा ही नहीं, तो पांचों शब्द कैसे होगा। तो ये वचन निकला बेसमझी से अचानक, वो भी माँ का वचन है, निर्णय नहीं दिया युधिष्ठिर ने, माँ ने कह दिया बस पांचों में क्या करेंगे। अरे रीत नहीं है आजकल की, कैसे विचार करते हो, रानियां तो कई हो जाए राजा के, मगर रानी के राजा कई हो ऐसे थोड़ा ही होता है, पति कई हो। फिर वो हुआ, फिर वो गए ब्यासी महाराज आए, प्रकट हुए, उसने कह दिया इसने वरदान मांगा था पहले जन्म में, पति 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 पांच बार कहा, इस बार ये पांच पति होंगे, भगवान शंकर ने वरदान दे दिया है, इसी कारण से ये बात हुई है। फिर वो द्रौपदी के सामने गए, उनके सामने बातें, उसे कहा मैं तो लड़की दूंगा पिछला हुआ जो है ब्राह्मण उसको, कह जी नहीं हम तो परसों ब्याह करेंगे। फिर व्यास जी ने कहा कि तुम क्या समझता है, तू धर्म नहीं है, ये धर्मराज खुद है जो बड़े भाई है, ये धर्म अवतार है, इससे बड़े तुम धर्म क्या जानता है। खैर वो फैसला हुआ, बात तो इतनी कहनी थी कि माँ का वचन है, जो रिवाज नहीं है, होने की बात नहीं है, ऐसी बात है बिना समझे माँ ने कह दिया। माँ को ये कहते हैं कि हम एक राजा की कन्या को जीत कर लाए हैं, ये कहते तो कहते बेटा ब्याह कर लो, मन तुम पांचू ले लो। अब पांचू कैसे ले ले, युधिष्ठिर ने कहा पांचू ब्याह करेंगे इसके साथ, तो फिर दृष्ट का हुआ, फिर भीमसेन का हुआ, फिर अर्जुन का हुआ, फिर नकुल का हुआ, फिर सहदेव का हुआ, पांच ही पांच बार ब्याह हुआ, ऐसे ब्याह हुआ। तो बात ऐसी है कि जो श्रेष्ठ पुरुष माँ कुंती माँ थी वो कोई मामूली थी, रजसी माँ थी, बड़ा बड़ी विचित्र माँ थी, कृष्ण भगवान की बुआ थी, तो उसने कह दिया तो पांचों ने ब्याह किया। इस तरह से आज्ञा पालन करने से माँ बाप की शक्ति आती है, शक्तिशाली भी न हो और माँ बाप की केवल गने से भी आज्ञा पालन करे तो आज्ञा पालन करने वाले में ताकत आ जाती है। क्यों? कि भगवान कहते हैं, संत ऋषि मुनि कहते हैं कि माता देव भव, पितृ देव भव, आचार्य माँ को देवता समझो, भगवान का स्वरूप समझो, बाप को भगवान का स्वरूप समझो, गुरु को भगवान का स्वरूप समझो, अतिथि को भगवान का स्वरूप समझो। ऐसे वचन आते हैं, मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। तो वो आज्ञा देने वाला वेद है, उससे वो ताकत मिलती है। तो उनकी आज्ञा पालन करे तब इतनी विलक्षण शक्ति उसमें आ जाती है, अलौकिक शक्ति। देखो नहीं, माँ कुंती के पांच में से एक भी नहीं मरा, धृतराष्ट्र के सौ मर गए, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा, सब मर गए। ऐसे विजय होनी तो माँ का वचन है, उसका आदर करे। इस तरह से गुरुजन है, माँ है, बाप है, उनके वचनों का आदर करता है, उनमें एक विलक्षण ताकत आ जाती है, शक्ति आ गई है, संचार होता है शक्ति का। इस वास्ते गुरु की बड़ी महिमा है। परंतु ऐसे कोई प्रबल गुरु हो, समर्थ गुरु हो, तब बात है। अब कोई नकली उसे कैसे काम चले। तो आज्ञा पालन करने से बहुत लाभ होता है। तो लाभ कोई चाहे तो किस मंत्र में है, किस काम में, ये नहीं है। वहां तो पालन करने वाला और आज्ञा देने वाले, वे दो समर्थ होते हैं, तब ये काम होता है। पारस और लोहा असली मिलता है तब सोना बनता है। ऐसे होते जो कुंती में जैसे माता हो, युधिष्ठिर जैसे पुत्र हो, बेटा हो, तो वहां पर ऐसी बात होती है विलक्षण। जो शास्त्रों से विरुद्ध ऐसी बात है वो भी बात हो जाती है वहां, ऐसी विलक्षण बात है। तो माँ का वचन है, और माँ के वचन से युद्ध किया नहीं, युधिष्ठिर युद्ध नहीं करते थे। व्यास जी ने कह दिया था युद्ध होगा, उसने कहा युद्ध करूंगा ही नहीं, कैसे मरेगी, अपना विचार पक्का कर लिया। माँ ने कहा बेटा युद्ध करो, तो माँ का वचन कैसे टाले, तब युद्ध किया। हम तो जन्म भर जंगल में रहेंगे, मौत से कोई बात नहीं है, हमारे कोई बात नहीं, फल फूल फल खा जो कुछ खा कर विवाह करेंगे। ऐसे युद्ध हुआ है। तो आज्ञा पालन से, भगवान के शरण होने से ये ताकत आती है स्वाभाविक ही। तो ये ताकत ये मंत्र में है, इस मंत्र में हो जाएगी, इस मंत्र से हो जाए। अरे मंत्र में नहीं है भैया, देने वाला लेने वाला होता है, उनमें शक्ति काम करती है, मंत्र शक्ति नहीं है। मंत्र में तो अपार शक्ति है, शब्द में अनंत शक्ति है, शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात्, शब्द में अचिंत शक्ति है। मन शक्ति शक्तिशाली कोई करे तब होता है ना। इस वास्ते इस मंत्र में है, जो हम क्या करें, इसका जप करें, कपड़ करो, आपकी मर्जी तो करो, वास्तव में इस मंत्र में नहीं है। भगवान नाम कोई सा आप ले लो, भाव से भावग्राही नाथ भगवान प्रकट हो जाएंगे, और बड़ी भाई शक्ति ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, प्रेम है, सब कुछ हो जाएगा। परंतु उसको आज्ञा पालन करो, और जो आज्ञा पालन करते उसमें शक्ति स्वतः आ जाती है, आपसे आप आ जाती है शक्ति, ताकत आ जाती है, उस काम हो जाता है। माँ के कहने से युद्ध किया, राजकल लोभ सही था, माँ की आज्ञा थी, इस बार युद्ध किया है, तो वैसे में ताकत उनमें है। तो अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा भंग मत करो, कहना करो, कहना करने में विलक्षण शांति विलक्षण आनंद है, बहुत विचित्रता है। परंतु झूठ बोल जाते हैं, वचन टाल देते हैं, आई हुई शक्ति को नष्ट कर देते हैं, लात मार देते हैं। कई लोग मेरी पगों की धूल देते हैं, धूल में धूल है भाई, क्या पड़ा है, बात तो मानते नहीं, पैर के धूल देते हैं, बात के ऊपर लात मारते हैं, न करो नहीं नमस्कार मत करो, एक बार लात मारेंगे और धूल में कहते कल्याण हो जाएगा, कैसे कहीं नहीं होगा ऐसा। तो आप ठीक तरह से अपने माइतों की, अपने बड़े गुरुजनों की आज्ञा पालन करो, सब कुछ काम होगा। तो ताकत आपके भाव में है, दूसरी ताकत आज्ञा देने वाले में है, उनसे शक्ति प्राप्त होती है। मंत्र और जप इनमें नहीं है, ताकत उसमें है। तो वो ताकत प्राप्त करो, जिससे कल्याण होगा। राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद कोई सा नाम लो भगवान का, प्रेम से ले और उससे हो जाए तो ठीक हो जाएगा। एक मैंने शिल्पिल्ला की कथा कही थी, शिल्पिल्ला नाम सालग्राम जी और शिल्पिल्ला महाराज, वो कन्या राज कन्या थी, सासरे गई तो हमारे शिल्पिल्ला नहीं है, वो पत्थर फेंक दिया उसके पति ने, ये नदी पर ठहरे थे, क्या ये लिया है, फेंक दिया नदी में, खाना पीना छोड़ दिया मैंने, हमारे इष्ट लिया है हमें शिल्पिल्ला शिल्पिल्ला। सालग्राम जी था उसने नाम सालग्राम भूल गई, शिल्पिल्ला मतलब शिल्ला का पिल्ला, छोटा बच्चा शिल्ला का बच्चा, पत्थर का बच्चा, शिल्पिल्ला शिल्पिल्ला पूजन करती थी। भोजन ने किया कि बहू मर जाएगी क्या करे, वो कहते मेरे शिल्पिल्ला नहीं आई, मैं तो बोले भोग लगा कर खाती हूँ, खाती ही नहीं। ये कहा कि उस नदी में है, वहां लिए गए शिल्पिल्ला शिल्पिल्ला आगे लग गए शिल्पिल्ला। ऐसी बात है, ताकत उस व्रत में है, नियम में है, पालन करने वाला हो लेने वाला हो तो, देने वाले में ताकत नहीं है तो पालन करने वाले ताकत आ जाए, क्यों भगवान की ऋषि मुनियों की शक्ति है तो कुछ भी कहे, पालन करने वाला सदा निशंक निर्भय रहता है, सब शक्ति मुफ्त में आती है, बोले कोई जिम्मेवारी नहीं, क्या जो कर दी उस पर क्या जिम्मेवारी, करने वाले पर जिम्मेवारी है, वो तो काम कर रहा है, कोई और कोई कर देगा। लाठी चलाने वाले पर, लाठी को तो पाप चलाने वाले पर लगता है, मोटर चलाने वाला जब दंड होता है, मोटर क्या करे बेचारी। इस तरह से जो आज्ञा पालन करता है उस पर सब आती है, उनकी शक्ति है, वो शक्ति काम करती है, ये बात है। दूसरी बात आई है, किसी भाई ने निवेदन किया है कि 7 वर्ष हो गए मेरे को प्रातः काल भगवान का नाम लिखता हूँ घंटा भर, तो मैं तो लिखता हूँ 7 वर्ष से कभी नागा नहीं हुई, कभी बाधा नहीं हुई, निरंतर लगता आ रहा हूँ। कई कई आदमी कहते हैं इसे क्या होगा, कुछ फायदा नहीं, बिल्कुल क्यों बर्बाद करते हो समय, आप छापे में छपवा दो और वो कहीं छप जाएगा, प्रेस में छप जाएगा, हजार लाखों नाम छप जाएगा, उसे भी कल्याण होता है, ऐसा कहते हैं। तो कभी कभी मेरे मन में संदेह हो जाता है, तो भाई है वह इनको ये मैं सब कहता हूँ, संदेह मत करो, तुम्हारा बड़ा भारी काम हो रहा है, कहने वाले होते हैं, आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आप अनजाने किसी की भक्ति में बाधा मत दो, जानते तो हो नहीं उस विषय में, दवाई कब दवाई खा दो ठीक हो जाएगा, आप जानते हो वैद्य की, वैद्य तो नहीं जानते, तो फिर आप क्या अधिकार करेगा, तुम यो कर लो ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा मत करो, कुछ नहीं है। ये आदत भाई बहनों आपकी मिटाओ, बड़ी आपका नुकसान करने वाली हत्या जैसी बात है ये, यूं कह दिया क्या वैसे छपा दो कहीं छप जाएगा, पनक ही लाखों छप जाएगा, तो सपने में मंत्र सपने थोड़ी है, वो लिखने से लिखा जाएगा उस मंत्र में, उस कागज में शक्ति है क्या, वो शक्ति है लिखने वाले में, यार उसको मैदावरी भगवान का नाम लिखता है वो, क्या छापा छपता है वो छापा देखता है कि भगवान का नाम है, क्या जाने वो जड़ में क्या चीज है, तो ये देख करके उनके विचलित कर देते हैं। आप विचलित मत हो ना, शेष पूछ लेना, मेरे सम्मति पूछिए क्या करो, कि बहुत ही अच्छी बात 7 वर्षों से कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप करते रहो और भगवान से कहते रहो, कहने वालों की एक बात मत मानो, उसे ब्रह्मा जी भी कह दे कुछ फायदा नहीं है, नहीं मानेंगे। जैसे पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा, सप्तऋषियों ने आगे कहा तुम कैसी हो, तुम पत्थर की पुत्री हो, तुम्हारे होश तो है नहीं, तुम नारद की बेश भागी, नारद ने नारद की बात सुनकर किसी का घर बसा, आजकल आज तक बताओ आप, उस नारद के घर में आ गई, गलती करी है, हम तुम्हारे को बहुत अच्छा वर बताते हैं, श्रीनिवास भगवान विष्णु की, ऐसा वर है ही नहीं कोई, वो भांग उद्रा खाने वाला जंगल में रहने वाला, न कपड़ा है न घर है, बोले घर में ना स्त्री कहाँ रहेगी, इकला तो बैठा रहे कहीं भी, बोले स्त्री के घर तो चाहिए, वैसे घर भी नहीं है ऐसा ऐसा। पार्वती ने कहा महादेव अवगुण भवन मान ली, और विष्णु सकल गुण धाम, मैं जाको मनर में जाम, मैंने तो भगवान शंकर से कहे जन्म कोई लग रगर हमारी, अरे बड़ो शंभु न तो रहा कुमारी, हमें तो कह लिया कर लिया विचार, ये उनका व्रत है, ऐसे व्रत में धारण करे महाराज, दुनिया में जितने हिंदुओं की लड़कियां है, मारवाड़ में तो बहुत विशेष और जगह भी होता है, गौर की पूजा करते हैं। माता तीन लोग के जननी सीता माता को भी वो उनकी माँ कह रही, बेटा आ जाओ गौर, गौरी करो आ जाओ, गौर जी को पूजन करो, उनसे वरदान प्राप्त करो। सब गए, सीता जी गई है माता स्तुति करी है, माँ बड़ी खुश हो गई है। तो गौरी की आज पूजी हो, पूजा होती है, और कोई श्रेष्ठ उसको कहते सती है, सती नाम पार्वती जी का है, वो सती कहलाती है। आज इतना बड़ा नाम है, किस बात पर? अपना प्राण है उस पर अटल है, सदैव अटल सिद्ध है। ऐसे अपने प्राण पर अटल रहे, आज्ञा पालन में अटल रहे, तो उसमें शक्ति से प्राप्त होती है। तो मैं तो कहता हूँ आप जपते रहो, परवाह मत करो, लोग बिना कारण भगते रहते हैं। वो आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप जितने भाई बहन सुनते हो, हरे को सत विधान कर, तू यू कर, ये रोग मिट जाए, यू कर, तू ये मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे पंचायती आप लोग न किया करो। किसी के भजन में बाधा देते हो, बड़ी भारी हत्या लगेगी, पाप लगेगा आपको। इस बार सावधानी से रहो, जल्दी कहो मैं तुम ऐसा करो ऐसा करो, मेरे से पूछते हैं उस विषय में मैं अपनी बात कह देता हूँ, करो तुम्हारी मर्जी है, वजह से मैं कोई आग्रह नहीं करता, परंतु मैं कहता हूँ संतों की, शास्त्र की, वेदों की, पुराणों की, स्मृतियों की जो बातें हैं वे बातें कहता हूँ, मेरे घर की थोड़ी बात है, उनकी बात उनके अनुसार करो। आप भगवान के भजन में लग जाओ, नाम कोई सा हो, प्रेम पूर्वक उसमें लग जाओ, तल्लीन होकर के तुम्हारा उद्धार होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, निस्संदेह कल्याण होगा। इस बात से तुम लगे रहो, छोड़ो मत। तो ये मेरा निवेदन है, ऐसी पंचायती मत करो, मत करो, मत करो। क्या होता है करने से, क्या होता है आपको पता नहीं है, समझे? क्या होता है आप क्या जाने, इस बात को जानने वाले जाने, उसका पता नहीं है आपको। इस बात से सम्मति मत दो, दवाई की सम्मति देंगे, काम करने की सम्मति देते, भजन करने की सम्मति देते, इसको इसको कुछ नहीं, इसे कुछ नहीं, इसे कुछ नहीं। आप जानते तो हो नहीं, ना तो लोगों को डबोते हो, पापी बनोगे आप।